इसके बाद है जी आयत नंबर 123 और 124, बस्ती के सरदार बस्ती के मुजरिम बना दिए जाते हैं। सरदार कौन होते हैं? मला, पैसे वाले, रोब वाले, हुकूमत वाले, ओहदों वाले। किसी भी तरह से इंसान को दुनिया में बड़ाई तो मिल जाती है ना। अब जब बंदे को बड़ाई मिली तो वो फिर बड़ा बन जाता है, जिसको हमारे यहाँ एक मुहावरे में क्या कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अल्लाह ताला ने वो कजाली का जाल नाफी कुल्ली करियतिन अकाबिर मुजरिमी हा। ये अकाबिर लफ्ज़ और मुजरिमी है आपके लिए, बड़े लोग। आज भी दुनिया में देखिए कि होते ये बहुत थोड़े लोग हैं। आप अपने मुल्कों की मिसाल लीजिए, आपके मुल्कों में एवरेज लोग बिल्कुल बीच की ज़िंदगी गुजारते हैं ना, ना बहुत गरीब है ना बहुत अमीर है। उसके बाद एवरेज के बाद आप थोड़ा सा जाइए तो कुछ लोग बिलो द पॉवर्टी पे हैं, कच्ची बस्तियों में रहते वो है। आपके मुल्क के जो, जिसको आप कह सकते हैं कि वो तबका जो दूसरों पे रोब डालता है, जिसको आप इन लीड्स कह सकते हैं, बासर शख्सियत, वो कितनी है? बिल्कुल थोड़ी है। कुछ सियासत में बड़े होंगे, कुछ मिलियनेरियन होंगे। इसको आप इस मिसाल से समझिए कि दूध, 1 किलो दूध पे जो बलाई आती है वो कितनी को होती है? मे बी 2 छटांक होगी। ये जो बलाई है ना, ये किसी माशरे का वो तबका है जो हमें अपने इर्द गिर्द दिखता है, जिनके बयान अखबारों में आते हैं या जिनको हम स्क्रीन पे देखते हैं, वो कोई अदाकार हैं, गुलूकार हैं, यानी लोग उनसे बड़े मरूब होते हैं। अब होते ये थोड़े से हैं, लेकिन चूंकि ऊपर होते हैं ना, बलाई ऊपर है। अगर किसी ने ना देखा तो बलाई को देख के वो समझेगा कि सारे दूध के अंदर है ही बलाई, लेकिन एक हल्का सा हाथ डाले तो ऊपर से वो छट जाती है। इस आयत का आपके मेरे साथ ताल्लुक़ क्या है कि अगर हमें अल्लाह ने ऊपर वाले तबके से बनाया, मसलन कि अल्लाह ने हमें दुनिया की भी दौलत दी है, इल्म भी दिया है, इज्जत भी है, हम माशरे के एक बड़े मौसर लोगों में शामिल होने वाले हैं, तो फिर अपनी इसलाह कीजिए। और अगर आप नीचे वाला दूध या छाछ या लस्सी हैं, तो फिर एक हाथ बढ़ाइए और ऊपर से जहाँ से भी गलत चीज़ें आती हैं आप कोशिश करके उसको हटाने की कोशिश करें। ये दोनों चीज़ें जब हो जाएंगी तो आपको बिल्कुल असल चीज़ असली तौर पे अपनी असल हालत में दिखेगी। फिर इसके बाद आयत नंबर 125 से 127 में टॉपिक है कौन हिदायत पर हैं और कौन गुमराही पर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसमें दोबारा शरह सदर की बात है, और आप नोट कर रहे होंगे कि सूरत अलनाम में दिल की ज़िंदगी, दिल की मुर्दगी, इसका बहुत जिक्र है। तो फ़मई युरीदिल्लाहु यहदियहु यशरख सदरहु लिल इस्लाम, बस वो जिसके लिए अल्लाह ही इरादा कर ले कि उसको हिदायत देगा, तो क्या करता है? उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। इसके बरक्स वो जिसके लिए इरादा करे कि उसको बहका दे, तो उसके सीने को तंग कर देता है घुटन वाला, गोया कि वो आसमान पे चढ़ रहा है। अब ये एक बड़ी खूबसूरत एनालॉजी है, ज़रा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात कि कौन हिदायत पे और कौन गुमराही पे। यहाँ यशरख सदरहू की बात है, तो शरह सदर होता क्या है और इसकी अलामतें क्या है? आप देखिए, शरख का लफ्ज़ उर्दू में भी हम बोलते हैं, तशरीह, शारख। अब शरह सदर की पहली अलामत क्या होती है? दारुल खुल्द, हमेश की के घर की तरफ बंदे का ध्यान चला जाता है। मैं यहाँ तो जी रही हूँ, मेरा वहाँ क्या होगा? मैं जो बोलूँगी इसका मेरी आखरत पे क्या होगा? यानी इंसान की नज़रें आखरत पे लग जाती हैं। इंसान अपने हमेशा के घर को सजाने और संवारने के लिए इतना हरीस होता है जितना कोई दुनिया के इस घर के लिए नहीं होता। और फिर दारुल गुरूर, ये दुनिया, आरसी ठिकाना, इसमें दिल नहीं लगता। जैसे बुज़ुर्ग के पास कोई आया और देखा कि घर में सामान ही नहीं है, कहा बुज़र आपका सामान किधर गया? कहने लगे दूसरे घर भेज दिया। कहने वाला नहीं समझा, कहा अच्छा कुछ इधर भी रख लेते। तब उनका जवाब सुनिए, कहने लगे यहाँ का मालिक मुझे यहाँ रहने ही नहीं देता। मुराद क्या था कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ? तो तीसरी चीज़, मौत से पहले तैयारी। अगर आप अपने अंदर इन तीन चीज़ों को पाते हैं तो मुबारक हो आपको। आपकी जो अक्सर मांगी हुई दुआ कर रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, वो पूरी हो गई। हज़रत मूसा ने फिरौन के पास जाते हुए ये दुआ मांगी थी, अल्लाह ताला ने उनको कोहे तूर के पास ये दुआ सिखाई थी। तो आपका मेरा इस आयत पे अमल क्या है? कैसे पता चले? मिसाल जो कि बहुत ही खूबसूरत है ना, तो इस पे नज़र डालते हुए अगर आप इस आयत के ऊपर एक ज़रा सी उचटती निगाह डालिए, अल्लाह ताला ने इसमें पहाड़ पे चढ़ने की मिसाल दी है। यस्अदु फिस्समा, कभी आप हिली इलाकों में गए हों तो आपने देखा होगा कि पहाड़ के ऊपर या चढ़ाई की तरफ जाना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पर जिनको आदत ना हो वो तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाते। लेकिन जब आप इवन गाड़ी भी ऊपर लेके जानी है तो फोर व्हील गाड़ी जाती है, जीप में जाएंगे आप। लेकिन जब आपने नीचे उतरना होता है तो कभी कभी गाड़ी को न्यूट्रल में करके जस्ट स्टेयरिंग घुमाते जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस बंदे को नेकियां करने में मुश्किल हो, सांस फूल रहा है, हाँ ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं होगा, ये कैसे होगा, तो समझें कि आप हार्ट पेशेंट हैं। जो दिल के मरीज़ हैं उनको अमूमन पहाड़ी इलाकों में जाने से मना करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने से मना करते हैं, क्योंकि उनकी धड़कनें ख़राब होंगी। तो आप ख़ुद अपने दिल का चेकअप कीजिए। अगर आपको हर छोटी बड़ी नेकी आसान लग रही है, नो प्रॉब्लम। कोई बहुत बड़ी भी नेकी कोई कहता है कि ये करें, आप कहते हैं नो प्रॉब्लम, अल्लाह से हो जाएगी, अल्लाह से तो मदद लेना है, हो जाएगी, तो अल्लाह का शुक्र है आप यू हैव अ हेल्दी हार्ट। और इसके ऑपोजिट को तो आप खुद ही समझ रहे हैं, तो अपना जायज़ा भी हम लेंगे, क्या मेरा हमेशगी के घर की तरफ रुख हो गया, क्या मैं दुनिया को आरजी ठिकाना समझती हूँ, क्या मेरा दुनिया में दिल लगता है, मौत से पहले तैयारियां करती हूँ। आप देखिए, इसका ये नहीं मतलब कि आप सब छोड़ दें, आप हंसना छोड़ दें, बोलना छोड़ दें, बच्चों के लिए काम करना छोड़ें, मियाँ के लिए बहुत ही आप एक बोझल सी चीज़ बने, नहीं, काम दुनिया के और दिल आखिरत में, हाथ काम की तरफ और दिल अल्लाह की तरफ। ये दुनिया आपके हाथों में रहे, दिल में ना आए, इसकी कामयाबी आपको इतना एक्साइटेड ना कर दे कि आप उसी में कुछ ऐसे काम करने लग जाएं जो पसंदीदा नहीं, और इसकी नाकामी आपको मायूस ना कर दे। फिर आगे आयत 128:29 में मैसेज क्या है, इंसानों की अक्सरियत नाकाम होगी। ये बहुत ही तकलीफ दह बात है, क्यामत का दिन होगा, अल्लाह कहते हैं व यौम यहशुरुहुम जमीअन, हम सब को इकट्ठा करेंगे, फिर कहेंगे जिन्नों के गिरोह, तुमने बहुत सारे इंसानों को हासिल कर लिया, और इसी तरह से एक दूसरे से फ़ायदा उठाने की बातें कर करा के जो पैगाम दिया जाएगा वो पैगाम क्या है कि तुमने इस दुनिया में अपना हिस्सा ले लिया। आप देखिए कि आज दुनिया में जो ही लफ्ज़ जिन आता है ना तो हम परेशान हो जाते हैं। हालांकि जिस तरह हम इंसान हैं, इंसानों में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, जिन्नों में भी अच्छे और बुरे हैं, 29वें पारे में हम सूरज जिन में इंशाल्लाह कुछ बातें पढ़ेंगे, लेकिन इस आयत का जो आपके मेरे लिए पैगाम है वो क्या है कि लोगों की अक्सरियत को किसी काम पे फाइस देखकर ये ना सोच लो कि वो अच्छा ही काम होगा। बहुत सारे लोग जो गलत काम करें और सक्सेसफुल हों तो क्या वो लोग कामयाब हो गए? आप देखेंगे कि दुनिया में जीने में आज ऐसे ही होता है, हम किसी के बच्चे को देखते हैं, वो पढ़ा लिखा, फिर वो बाहर पढ़ने गया, फिर उसकी बहुत अच्छी जॉब लग गई, हम कहते हैं बस ये कामयाब है। इसके बरक्स एक किसी का बच्चा है लेकिन हो सकता है जो बाहर जाने लगा वो बिगड़ गया किसी वजह से भी। इसके बरक्स एक बच्चा है जो आपकी आंखों के सामने रहा, उसने लिखा पढ़ा भी लेकिन उसका अखलाक बड़ा समरा, वो आपकी खुशी का जरिया है, वो आपका ख्याल रखता है, आपके पास है, तो क्या ये बच्चा नाकाम है? यानी चमकती चीज़ों से धोखा ना खाइए, इसमें ये मैसेज लिख लें। फिर आगे आयत 130 से 132 में अल्लाह ताला किसी को नाहक अजाब नहीं देगा, ये मैसेज है। अल्लाह ताला तो खुद इंसाफ करने वाला है, अदल है, अल्लाह ताला किसी को क्यों पकड़ेगा? इसीलिए यहाँ जिन्नो इंस दोनों के लिए जो मैसेज दिया गया वो क्या था कि हमने तुम्हारे लिए हुज्जत पूरी कर दी लेकिन तुमने जो किया तुम्हारे साथ होगा, वली कुल्लिन दरजा तुम्हें माँ उमिलू, ये है असल जुमला, हर एक के दर्जे होंगे उसके मुताबिक जो उन्होंने अमल किए, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, आप जितनी मेहनत करते जाएं आपको उतना फल मिलता जाएगा। एक ड्राइवर है जो गाड़ी चलाता है या रिक्शा चलाता है, वो जितना ज़्यादा वक्त चलाएगा अल्लाह उसको उतने ज़्यादा पैसे दे देगा। एक किसान है, वो ज़मीन में जितना बीज डालेगा अल्लाह उसको उतना देगा। बिल्कुल इसी तरह आपके मेरे पास 24 ही घंटे होते हैं, आपके मेरे पास रात और दिन की एक ही बांट है, सो के गुजार दीजिए, रो के गुजार दें, हंस के गुजार दें, वरना एक एक लम्हे को आप आखिरत के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए। कभी कभी आपके पैसे रखे होते हैं पड़े पड़े बेकार, उनकी कीमत गिर जाती है, आपके पास सोना चांदी होता है लेकिन आपने बस रखा हुआ है तो रखा हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बहुत सा प्रॉफिट आता है। तो इन्वेस्ट योर सेल्फ, अपनी ज़ात को इन्वेस्ट कीजिए, अपने वर्क को इन्वेस्ट कीजिए, अपनी बिलोंगिंग्स यानी सोना चांदी वर्क बच्चे घर गाड़ी हर चीज़ को लेके पेश किया करें कि अल्लाह मैं इससे क्या नेकी कमाऊँ। और यकीन करें सिर्फ आपके अपने घर या एक मर्द है तो उसके कारोबार में बीसियों मौके निकल आएंगे कि जिसमें वो नेकियाँ कमा सकता है। आज हमें इसकी कदर कम है और जो कल होगा वो सूरह अल-अराफ़ में पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। आगे आ रहा है तो आप उसको देखेंगे। फिर उसके बाद आयत नंबर 133 से 135 में पैगाम क्या है कि जालिम कामयाब नहीं होंगे। वरब्बुकल गनी यज़ू रहमा, तुम्हारा रब तो गनी है। गनी कहते हैं खुले हाथ से खर्च करने वाले को, रहमत वाला है वो। अगर चाहे तो तुम सबको ले जाए और तुम्हारे बाद दूसरों को ले आए, कोई और ही लोग होंगे वो, और जो वादे तुमसे किए जाते हैं वो पूरे होंगे। तुम क्या करो, कुल या कौमे मलू अला मकानतिकुम, ए मेरी कौम तुम अपनी जगह पे अमल करते रहो, इन्नी आमिल मैं भी अमल कर रहा हूँ, यानी मीन डू योर बेस्ट, फसौफ़ तालमून अन करीब तुम देखोगे कि किसका आखरत का घर अच्छा होता है और जालिम तो फला नहीं पाते। बिल्कुल वही मैसेज है कि जिसने इस ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारा, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारा, उसको कल वहाँ कामयाबियाँ मिलेंगी। और जिसने जुल्म किया शिर्क करके अल्लाह का हक ना दे के और बाकी चीज़ों में, उसको वहाँ जाकर शर्मिंदगी होगी। फिर आगे आयत 136 से 139 में अल्लाह ताला की नाशुक्री की कुछ बातें हैं। आप देखिए कि जानवर भी अल्लाह ने पैदा किए, खेतियाँ फसलें भी अल्लाह के हुक्म से होती हैं। मक्का वाले चूँकि बिगाड़ का शिकार हो चुके थे, हालांकि हज़रत इब्राहिम से नस्बत भी जोड़ते थे और ख़ुद को हज़रत इस्माईल की नस्ल से होने की वजह से बड़ा मोतबर समझते थे, लेकिन उन्होंने सुने सुनाए तरीके पे कीलो काल, लोग ये कहते फ़लाँ ये कहता, पूरी अपनी एक शरीयत बना ली थी। उसका तذकरा है नायात में, किसी जानवर का ये नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, इस पे सफ़र नहीं कर सकते, ये तो बड़ा मोतबर है और ऐसा है। पीछे हमने वो एक लिस्ट भी देखी थी ना, हाम और साहिबा की, आगे भी आएगी इंशाल्लाह। क्या पता चला कि लोग कुरान तो पढ़ते नहीं हैं, आज भी ऐसा है। आप देहातों में जाइए, आप इंटीरियर के इलाके में जाकर देखिए, लोगों को कलमा भी नहीं पढ़ना आता, नमाज का तर्जमा तक नहीं आता। वो लोग जो बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं शहरों में रहने वाले, उनको अरबी भी सही नहीं बोलनी आती, कुरान का तलफ़ुज़ ही दुरुस्त नहीं है। लेकिन अपनी एक खुद साख्ता शरीयत बनाई हुई है, इस महीने में ये कर लो तो ये होगा, इस रात को जाग लो तो ये हो जाएगा, इस दरवाजे से गुजर जाओ तो तुम जन्नती हो जाओगे। यहाँ ऐसी ही खुद साख्ता बातों को अल्लाह की नाशुक्री करार दिया गया। हम अपने ऊपर लेते हैं, छोड़िए मक्का वाले तो गुजर गए, हम तो ये कुरान अपने लिए पढ़े, क्या आज हमारे अंदर ऐसी कोई बात है? ये जानवर इसका गोश्त एक खा सकता है तो वो नहीं खा सकता, ये औरतों के लिए है ये मर्दों के लिए है, इसको चांद की फलां तारीख पे खाना है, ये दूध अगर फलां तारीख को महीने को दिया गया तो कबूल होगा नहीं होगा। आज ऐसी भी सीओ फरसूदा चीज़ें हमारे पास हैं, और जो ये कर रहे होते हैं ना, आप अगर उनसे पूछ भी लेना, भई आप ये क्यों कर रही हैं, पता नहीं, जब से ससुराल में आई हूँ मेरी सास ये करती थी तो मैंने भी करना शुरू कर दिया। कोई कहेगा ये तो मेरी दादी के वक्त से चल रहा है। तो ऐसे तमाम लोगों को पैगाम किया है कि आप पढ़ा लिखा दौर है, रोशनियों का दौर है, अल्लाह ने आपको दुनिया की भी बहुत तालीम दी, एक दफ़ा कुरान और हदीस को खोल कर देखिए और जो चीज़ अप्रूव है उसको करते रहिए, कोई बुरी बात थोड़ी है। कोई दादी के करने वाले कामों में सारे काम गलत तो नहीं, बल्कि उनके ज़्यादा तो ठीक थे, आदत उनकी बहुत अच्छी, अखलाक उनका बहुत अच्छा, शर्मो हया में वो बहुत अच्छी, घरदारी में वो बहुत अच्छी। अब अगर कुछ चीज़ें उन्होंने दीन के नाम पे कुछ ख़ास मौक़ों पे करनी चाहिए, बस उसकी तहकीक कर लीजिए तो इंशाल्लाह अल्लाह नाशुक्री से बचाएगा। फिर आगे आयत 140 में गुमराही का बदतरीन इंजाम हमेशा का खसारा, और वो कैसे, औलाद को कत्ल करने लगे। कद खसिर अल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बग़ैर इल्म, इंसान इतना ज़्यादा बेहिस हो जाता है कभी कभी कि वो अपनी औलाद तक को कत्ल करता है। मक्का वालों में औलाद का कत्ल आम था। बड़ी बड़ी तीन रीज़न्स हैं, ये आएंगी आगे। इधर जो रीज़न है इसको समझिए और आपके दिल पे हाथ पड़ेगा। पहलोठी का बच्चा, यानी जब किसी के घर में पहला बच्चा पैदा होता ना, तो उसको अपने एक बुत के चरणों में जाकर ज़िबह करते थे, उसका खून बहाते, यानी बच्चे को कत्ल करते, और क्या सोचते कि हमारा ये बुत हबल नाम और इस तरह मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नाम थे, ये हमसे खुश हो जाएगा। अल्लाह ने कहा कि देखो रस्में और ख़ानदान में जो हो रहा है वो चीज़ इतना इंसान की अक़ल को मार देती है कि वो अपनी औलाद तक को कत्ल कर देता है, लिहाजा ऐसे कामों से बचना है। और साथ ही फिर आगे 141-142 में फलों और जानवरों में अल्लाह की कुदरत के शाहकार, यानी आप सूरत अल-अनआम का इस वक्त वो हिस्सा पढ़ रहे हैं कि जिसका ताल्लुक़ अरबों की डे टू डे लाइफ से था। और आपको ये बातें इस वक्त बड़ी अजीब लग रही होंगी, लेकिन अगर माजरत के साथ कहूँ, हम अपने ऊपर भी नज़र डालें तो बहुत सारे ऐसे काम आज हम भी करते हैं, रह जाती बातें हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। आप ख़ुद सोचिए और गौर कीजिए कि आज हम फलों, दूध, गोश्त और इस तरह की चीज़ों को किस तरह गैर शरई तरीक़ों से ज़ाया करते हैं। और इनमें ख़ास तौर पे आप देखिए कि जब उनकी फसल कटती थी ना, उस दिन के नाम पर भी बहुत सारी उन्होंने रस्में घड़ी हुई थी। बस आप देखिए कि आज भी कुछ मज़हब ऐसे हैं जिसमें पीले रंग को बड़ा मोतबर समझा जाता है, और बहार की देवी, दौलत की देवी, लक्ष्मी देवी, ये जो तसव्वुर थे ना, यहाँ इन चीज़ों का तذکرہ, यानी वो एक अल्लाह को खुश करने से ज़्यादा खुद साख्ता बनाई हुई देवियों को खुश करना चाहते थे और इसराफ करते थे। क्या इसराफ था? फसल अल्लाह ने दी, बीज को अल्लाह ने बिल्कुल फ्रूट तक पहुँचाया या उससे गल्ला निकला, लेकिन उन चीज़ों को दूसरों के नाम पे मंसूब करते थे। और इसका एक बड़ा अहम जुमला नोट कर ले, वला तत्तबी खुतुवात शैतान। आपको ये जुमला भी कुरान पाक में कई जगह मिलेगा। यहाँ शैतान के कदम क्या है? यहाँ शैतान के कदम ये हैं कि वही फल और वो जानवर जो अल्लाह ने दिए, जो अल्लाह की कुदरत का शाहकार है, तुम उनको किसी तरह से गैर अल्लाह के लिए ज़िबह ना करने लग जाओ, उनको राजी ना करने लग जाओ और इस तरह की चीज़ों में ना आ जाओ। इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह ही के रास्ते में इस्तेमाल करना चाहिए।